नमस्कार भारत, तारीख 30 नवंबर, दिन बृहस्पतिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। बोस्निया के युद्ध अपराधी को जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई, स्लोबोदान प्रालिएक ने अदालत में पिया जहर, हुई मौत। गुजरात चुनाव प्रचार में कांग्रेस व बीजेपी दोनों के एक दूसरे पर शब्दबाण है जारी।
सरदार वल्लभ भाई पटेल न हो तो आज सोमनाथ नु भव्य मंदिर बन्यू हो।
मुशर्रफ क्यों कर रहे हैं लश्करे तैयबा का समर्थन, करेंगे विश्लेषण। दुनिया जहान में बताएंगे कौन है कुख्यात बोस्निया का कसाई। लेकिन पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। हेग की अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत में युद्ध अपराधी स्लोबोदान प्रालिएक ने हेग की अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत में ही जहर पी लिया। बाद में उनकी अस्पताल में मौत हो गई। पूर्व युगोस्लाविया के लिए युद्ध अपराध ट्राइब्यूनल की अंतिम सुनवाई में पेश हुए स्लोबोदान प्रालिएक ने जैसे ही जज के 20 साल की सजा बरकरार रखने का फैसला सुना, उन्होंने एक गिलास से तरल पदार्थ पीते हुए अदालत से कहा कि मैंने जहर पी लिया है। जहर पीने से पहले उन्होंने अदालत से कहा कि मैं अपराधी नहीं हूं। अदालत ने 6 क्रोएशियाई युद्ध अपराधियों को बोस्निया के मुसलमानों के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए दी गई 20 साल की सजा बरकरार रखी है। जनरल प्रालिएक की मौत की खबर के बाद मोस्टार शहर में उन्हें श्रद्धांजलियां दी गईं। संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी दूत निकी हेली ने उत्तर कोरिया के नेतृत्व को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि युद्ध हुआ तो उत्तर कोरिया पूरी तरह तबाह हो जाएगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में बोलते हुए हेली ने सभी देशों से उत्तर कोरिया से कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते खत्म करने की अपील की है। हेली ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उत्तर कोरिया के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति बंद करने की अपील की है। राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं कि उत्तर कोरिया पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। बुधवार को उत्तर कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करते हुए समूचे अमेरिका के अपने मिसाइलों की जद में होने का दावा किया था। निकी हेली ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा,
The continuing development of these missile systems demands that countries further isolate the
Kim. इन मिसाइल प्रणालियों के निरंतर विकास के बाद सभी देशों को किम शासन को और अलग थलग कर देना चाहिए। आज हम सभी देशों से उत्तर कोरिया से सभी रिश्ते खत्म करने की अपील करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को पूरी तरह लागू करने के अलावा सभी देश उत्तर कोरिया के साथ कूटनीतिक, व्यापारिक, सैन्य और वैज्ञानिक सहयोग खत्म कर दें। ये थे निकी हेली के शब्द। राष्ट्रपति ट्रंप के दक्षिणपंथी ब्रितानी समूह के भड़काऊ वीडियो रिट्वीट करने को ब्रितानी प्रधानमंत्री ने गलत कहा है। ब्रितानी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया है कि अमरीकी राष्ट्रपति का ब्रिटेन के दक्षिणपंथी समूह ब्रिटेन फर्स्ट की ओर से ट्वीट किए गए वीडियो को रिट्वीट करना गलत है। इन वीडियो में मुसलमानों को हमला करते हुए दिखाया गया है। ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरिजा मे के कार्यालय की ओर से कहा गया है कि ब्रिटेन फर्स्ट नफरत फैलाने वाली बातें करता है जो झूठी होती हैं और तनाव पैदा करती हैं। वहीं अमरीकी इस्लाम संबंध परिषद का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप मुसलमान विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। परिषद के निदेशक निहाद अवाद ने वॉशिंगटन में एक प्रेस वार्ता में कहा,
प्रेसिडेंट ट्रंप्स एक्शंस आर पुटिंग द लाइव्स एंड सेफ्टी ऑफ अमेरिकन मुस्लिम।
राष्ट्रपति ट्रंप के कृत्य अमरीका में अमरीकी मुस्लिम परिवारों और बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। नफरत भरी बातें नफरत से प्रेरित हमलों तक पहुंच जाती हैं। जब नफरत से भरे भाषणों और साजिशों को चुनौती नहीं दी जाती है, खासतौर पर जब वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हों, तो वो लंबे समय से चले आ रहे पूर्वाग्रहों को ही मजबूत करती हैं और नफरत से प्रेरित हमलों के लिए माहौल तैयार करती हैं। ज्वालामुखी की राख की वजह से 3 दिन से बंद बाली द्वीप के एकमात्र एयरपोर्ट के दोबारा खुलने के बाद लंबी कतारें लगी हैं और असमंजस का माहौल है। फंसे हुए पर्यटकों को निकालने के लिए अतिरिक्त उड़ानें चलाई जा रही हैं। हालांकि इन प्रयासों की कामयाबी बहुत हद तक मौसम पर निर्भर रहेगी। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खबर से कर रहे हैं। हेग की एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत में बेहद नाटकीय घटनाक्रम हुआ। बोस्निया में युद्ध अपराधों के लिए जैसे ही अदालत ने क्रोएशिया के पूर्व सैन्य जनरल को सजा सुनाई, उन्होंने जहर पी लिया। सुलबुदान प्रालियेक की बाद में अस्पताल में मौत हो गई, लेकिन अदालत ने कोर्ट रूम को अपराध स्थल घोषित करते हुए दूसरे कमरे में सुनवाई जारी रखी। सभी 6 युद्ध अपराधियों को 20 साल की सजा बरकरार रखी। पूरा ब्यौरा सुनिए दिलनवाज पाशा से।
हेग में पूर्व युगोस्लाविया के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक ट्राइब्यूनल में चल रही सुनवाई एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद रोक दी गई। अदालत में पेश 1992 से 95 के बीच बोस्निया में चले गृह युद्ध के युद्ध अपराधी स्लोबदान प्रालियेक ने सुनवाई के दौरान ही जहर पी लिया। प्रालियेक को सजा सुनाते हुए जज कार्मेल एगेस ने कहा,
"Dismisses the prosecution's appeal concerning Pralyak in all other respects."
प्रालियेक से जुड़ी अभियोजन पक्ष की सभी अपीलें रद्द की जाती हैं, 20 साल की कैद बरकरार रखी जाती है, बशर्ते नियम 101C के तहत जो समय वो हिरासत में बिता चुके हैं उसे सजा में से कम कर दिया जाए। श्रीमान प्रालियेक, आप बैठे रहिए। स्लोबोदान प्रालियेक को मोस्टार शहर में किए गए युद्ध अपराधों के लिए 2013 में 20 साल की सजा सुनाई गई थी। यह सुनवाई उस सजा के खिलाफ की गई आखिरी अपील पर हो रही थी। जैसे ही स्लोबोदान को पता चला कि ट्राइब्यूनल ने उनकी सजा को बरकरार रखा है, उन्होंने कहा, "मैंने जहर पी लिया है." यह सुनते ही जज कार्मेल एगियस ने कहा,
ओके,
हम कार्रवाई रोकते हैं, कृपया पर्दे गिरा दें, वो ग्लास ने ले जाएं जिसका उन्होंने कुछ पीने के लिए इस्तेमाल किया है। पर्दे गिराए जाने से पहले तक अदालत में अफरा तफरी मची हुई थी। हालांकि कुछ ही देर बाद दूसरे कमरे में अदालत की कार्यवाही शुरू हुई और जज कार्मेल ने कहा,
कोर्टरूम
एक अब अपराध स्थल है और नीदरलैंड के प्रशासन ने उसे आगे होने वाली जांच के लिए सुरक्षित कर लिया है। अदालत की कार्यवाही दूसरे कमरे में जारी रही और सभी 6 युद्ध अपराधियों की 20 साल की सजा बरकरार रखी गई। वहीं क्रोएशिया के सरकारी मीडिया के मुताबिक स्लोबोदान की बाद में अस्पताल में मौत हो गई। उनकी मौत की पुष्टि करते हुए अदालत के प्रवक्ता निनाद गोलेवेस्की ने बताया,
"The appeals chamber confirmed Mr. Pralyak's conviction and affirmed his sentence to 20 years."
अपील चैंबर ने प्रालियेक की 20 साल की सजा बरकरार रखी। प्रालियेक ने अदालत में ही कुछ पी लिया और तुरंत बीमार पड़ गए। अदालत के चिकित्सा कर्मचारियों ने उनकी तुरंत मदद की। इसी दौरान एक एम्बुलेंस बुलाई गई और प्रालियेक को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया जहाँ उनकी मौत हो गई। अदालत में तरल पदार्थ पीने से पहले प्रालियेक ने कहा था कि मैं युद्ध अपराधी नहीं हूं। वहीं क्रोएशिया की सरकार ने प्रालियेक के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की है और अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले की आलोचना की है। प्रधानमंत्री एंड्रेज प्लेनकोविच ने कहा, उनका कृत्य जिसे दुर्भाग्य से आज हम सब ने देखा है, 6 क्रोएशियाई नागरिकों के साथ बोस्निया और क्रोएशिया के लोगों की ओर से हो रहे घोर नैतिक अन्याय को दर्शाता है। सरकार बोस्निया हर्जेगोवानिया युद्ध में हुए सभी अपराधों के पीड़ितों के प्रति संवेदना प्रकट करती है। हम फैसले पर असंतोष और अफसोस जाहिर करते हैं। बोस्निया क्रोएशिया की सेना के पूर्व कमांडर स्लोबोदान को मानवता के खिलाफ अपराध के जुर्म में सजा मिली थी।
बोस्निया के युद्ध अपराधी स्लोबोदान प्रालियेक ने अदालत में पिया जहर, उनकी मौत हो गई। कार्यक्रम में आगे यानी कि दुनिया जहां में आपको बताएंगे बोस्निया के कसाई के नाम से कुख्यात पूर्व सर्ब कमांडर रिटको म्लाडविच के बारे में, जिनको अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध ट्राइब्यूनल ने पिछले हफ्ते युद्ध अपराध का दोषी ठहराया है।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 7565, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, चुनाव रैलियों में नए नए रंग और आरोप प्रत्यारोप के उतने ही नए नए ढंग भी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात में कई चुनावी रैलियों में संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी गुजरात में है, जहां उनकी किसी रैली ने तो सुर्खियां नहीं बटोरी, लेकिन सोमनाथ मंदिर में उनके जाने से प्रधानमंत्री मोदी को हमले का मौका जरूर मिल गया। संदीप सोनी की रिपोर्ट।
अरब सागर के किनारे जूनागढ़ जिले में ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर कल काफी चर्चा में रहा। कल जिस समय कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सोमनाथ मंदिर में दर्शन कर रहे थे, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पर हमला बोल रहे थे।
सरदार वल्लभ भाई पटेल न होत तो आज सोमनाथ नु भव्य मंदिर बन्यू होत, जे आ देश ना पहला प्रधानमंत्री हता।
प्राची में आयोजित एक चुनावी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि सोमनाथ का मंदिर बने। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ना होते तो सोमनाथ मंदिर दोबारा खड़ा नहीं होता। प्रधानमंत्री मोदी ने मोरबी की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा।
इंदिरा बेन मोरबी आया था अने चित्रलेखाना टाइटल पर नो फोटो छे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजराती साप्ताहिक पत्रिका चित्रलेखा का हवाला देकर कह रहे थे कि मोरबी में जब त्रासदी हुई तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने लोगों की मदद की, लेकिन दौरे पर आई तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मुंह पर कपड़ा बांध कर आई थी। इस घटना के बारे में गुजरात में वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दयाल बताते हैं।
1979 में मोरबी टाउन में मच्छू डैम था, जो बारिश के दरमियान वो डैम टूट गया था। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मोरबी की विजिट पे आई थी और हजारों के तादाद में इंसान और जानवर मरे होने के कारण वहाँ बड़े तादाद में रिलीफ वर्क भी चल रहा था। काफी सारी जगहों पे लाशें गिरी हुई थी। इंदिरा गांधी मोरबी की विजिट के दौरान जैसे अपना चेहरा और नाक रुमाल से ढक के रखती है, उसी प्रकार रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले आरएसएस के स्वयंसेवक भी अपना चेहरा बीमारी से बचने के लिए मुंह पे रुमाल बांधे हुए नजर आते हैं। वहाँ जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे उनके लिए और मोरबी में आने वाले हर इंसान के लिए जरूरी था कि वो अपना चेहरा ढक के रखे ताकि वो महामारी से बच पाए।
यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि प्रधानमंत्री मोदी गुजरात विधानसभा चुनाव में इतनी पुरानी घटनाओं का हवाला क्यों दे रहे हैं? गांधीनगर में वरिष्ठ पत्रकार आर के मिश्र कहते हैं।
भारतीय जनता पार्टी जो तकरीबन 20 साल से सत्ता पर है, उनके पास मुद्दों की कमी दिखाई दे रही है, लिहाजा वो नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाने में लगे हुए हैं। आपके पास मुद्दों की कमी है डेवलपमेंट को लेकर या आपके किए हुए कामों को लेकर, और जो लोगों में असंतोष दिखाई दे रहा है उसका जवाब जब आप नहीं दे पा रहे हैं तब आप पुरानी पुरानी बातें उठा रहे हैं। सोमनाथ का मंदिर बना था तब क्या हुआ था या किनके पूर्वज क्या कर रहे थे, उसी इतिहास का आज की राजनीति से क्या लेना देना है।
वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि गुजरात विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के बाद सबसे रोचक चुनाव बन गए हैं। इस चुनाव में इतिहास के बहाने हो रही बहस वर्तमान पर क्या असर डालेगी, 18 दिसंबर को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। संदीप सोनी, BBC, दिल्ली।
पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के एक चैनल को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि वो लश्करे तैयबा के सबसे बड़े समर्थक हैं और लश्कर वाले भी उन्हें पसंद करते हैं। परवेज मुशर्रफ ने यही बात जमात-उद-दावा और उसके प्रमुख हाफिज सईद के बारे में भी कही। उनका कहना है कि वो कश्मीर में एक्शन के पक्ष में रहे हैं। हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने ही इस्लामाबाद में वरिष्ठ पत्रकार एहतशामुल हक से बात की और पाकिस्तान की मौजूदा सियासत की रोशनी में परवेज मुशर्रफ के इस बयान के मायने समझने चाहे।
पाकिस्तानी सियासत हो, हिंदुस्तानी सियासत हो या किसी और मुल्क की भी हो, आमतौर पे देखा ही जाता है कि जो शख्स हुकूमत में जिस वक्त होता है, चाहे सदर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे आर्मी चीफ हो, उनके बयानात कुछ और होते हैं। जब वो हुकूमत से हट जाते हैं तो उनके बयानात कुछ और होते हैं। मुशर्रफ साहब जब वॉर ऑन टेरर में अमरीका के साथ शामिल हुए थे 2001 के बाद, उस वक्त से वो मुसलसल इन सारी जिहादी तंजीमों के खिलाफ बयानबाजी किया करते थे और सख्त रवैया रखते थे। बेशुमार लोगों को उन्होंने पकड़ के पैसे लेके अमेरिका के हवाले भी किया था। अब क्योंकि हुकूमत से बाहर हैं, حکومت سے ان کی لڑائی بھی ہے خاص طور پر نواز شریف کی, اور باہر بیٹھے ہیں ان کے اوپر کیسز بھی چل رہے ہیں, نال مسجد کا کیس ہے, نواب اکبر بھٹی کے مرڈر کا کیس ہے, اور بہت ساری کیسز ہیں, ایمرجنسی لگائی تھی 2007 کی وہ کیس ہے. تو یہ ساری چیزیں جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کو اب نظر آتا ہے کہ کم بیک کیسے کیا جائے سیاست میں. ایک دفعہ پاکستان آئے تھے, مختلف کیسز بھگتے اور بڑی مشکل سے فوج کی مدد سے وہ واپس چلے گئے. لہٰذا باہر بیٹھ کے ان کے یہ بیانات دینے کا مقصد صرف ایک ہے کہ ظاہر ہے انڈیا کے ساتھ کارگل کے بعد تو جس طرح اگرچہ انہوں نے واجپائی صاحب کے ساتھ معاہدہ بہت قریب کر لیا تھا اور بعد میں پرائیویٹلی کہتے بھی تھے شاید ہم نے غلط کیا ہے, لیکن اب ان کو سوٹ کرتا ہے کہ نواز صاحب کی حکومت کے خلاف باتیں کریں اور وہ اب کسی طریقے سے پاکستانی پالیٹکس میں داخل ہوں, اور وہ کہہ چکے ہیں کہ میں مستقبل میں خاص طور پہ الیکشن سے پہلے پاکستان آؤں گا.
جماعت الدعویٰ اور لشکر طیبہ جیسی جماعتوں کو, سنگٹھنوں کو ایڈریس کر کے, ان کی تعریف کر کے, کیا پرویز مشرف ان کا سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور کیا پاکستان کی راجنیتی میں ان آرگنائزیشنز کا سپورٹ ہونا نہ ہونا معنی رکھتا ہے؟
کہیں نہ کہیں تو یہ لگتا ہے کہ حکومتیں جو ہے نا وہ انڈائریکٹلی کو سپورٹ کرتی ہیں, حکومت نہیں کرتی تو گورنمنٹ کے اندر جو ہے نا وہ لوگ, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اگرچہ اسٹیٹ پالیسی تو نہیں ہوتی لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ مختلف والوں سے ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی مدد دے رہے ہوتے ہیں, اور کچھ نہیں تو پولیٹیکل سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جنرلی پاکستان میں لوگ اب ریئیکٹ کرتے ہیں, لوگوں کا خیال ہے کہ بھئی پاکستان جو ہے نا وہ تین بارڈر جو ہے نا وہ پاکستان کے سیکیور نہیں ہیں, انڈیا کا اور مغربی بارڈر جو ہے نا وہ افغانستان کا, اب ایران کے بارے میں بھی کہتے ہیں. ان حالات میں لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ بھی پاکستان کو اپنی فارن پالیسی اس طرح ترتیب دینی چاہیے کہ ایک تو نیبر سے تعلقات اچھے کیے جائیں اور دوسرا یہ جو جہادی تنظیمیں ہیں ان کو کٹیل کیا جائے. اگرچہ بڑی حد تک اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے اوور دی ایئر, لیکن ابھی بھی آپ دیکھ لیں جس طرح اسلام آباد میں دھرنا ہوا, ایک مذہبی جماعت اب جو سیاسی جماعت بھی بن گئی ہے تو وہ اب اس کا فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں. عام طور پہ لوگ اس طرح بھی دیکھتے ہیں کہ یہ مذہب کو لبادہ اوڑھ کے تو لوگ سیاست بھی کرتے ہیں, تو مشرف صاحب بھی یوں سمجھ لیں کہ اس چکر میں ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستانی سیاست میں دوبارہ ان ہو, جس کے چانسز بہت کم ہیں کیونکہ جو انہوں نے پہلے ایکسپیرینس کیا ہے ان کا خیال تھا وہ جو پاکستان آئیں گے تو دنیا امڈ آئے گی, ایسا نہیں ہوا. تو اب صرف وہ اپنے بیانات دے کے ٹیلی ویژن چینل تک ان کی وہ رہ گئی ہے.
پاکستان کے اسلام آباد میں ورشٹھ پترکار احتشام الحق وشلیشن کر رہے تھے پاکستان کے پورو راشٹرپتی اور سینا پرمکھ پرویز مشرف کے اس بیان کا جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ لشکر طیبہ کے سب سے بڑے سمرتھک ہیں. کارکرم میں اب اخباروں کا ذکر کرتے ہیں. دلنواز پاشا کیا کہہ رہے ہیں اخبار, بہت سارے اخبار آپ نے بچھا رکھے ہیں.
جی, آنکھ بند کرے ہوئے راہل گاندھی, ہاتھ جڑے ہوئے اور ان کے ماتھے پر تلک کرتے ہوئے پنڈت, یہ تصویر بتا رہی ہے کہ راہل گاندھی کی ہندو دھرم میں آستھا ہوگی. لیکن وواد یہ ہے کہ سومناتھ کے مندر میں جب راہل گاندھی درشن کرنے گئے تو ان کا نام غیر ہندو رجسٹر میں, اور یہ خبر کل دن بھر سوشل میڈیا پر رہی. بعد میں کانگریس کو
سارے ٹی وی چینل بھی اسی کو کیری کر رہے تھے, آج بھی
سبھی اخباروں میں پہلے پنے پر ہے, اور بعد میں کانگریس کو صفائی دینی پڑی کہ راہل گاندھی تو جنیو دھاری ہندو ہیں.
اور ابھی جو ہم نے رپورٹ سنی تھی اس میں یہ مندروں کو لے کر کیسے کس طرح سے وواد ہے اس پر.
جی بالکل, اور اسی خبر پر دینک بھاسکر لکھتا ہے دھرم سنکٹ, سومناتھ مندر کے غیر ہندو رجسٹر میں راہل کا نام. وہی پنجاب کیسری کا کہنا ہے کہ کانگریس نے بھی گجرات چناؤ میں ہندو کارڈ کھیل دیا ہے. جی اس کے علاوہ جو گجرات میں چناؤ چل رہا ہے اس میں جو نیتاؤں کی بیان بازی ہو رہی ہے, پہلے راہل گاندھی نے جی ایس ٹی کو گبر سنگھ ٹیکس کیا تھا تو اب مودی نے کہا ہے اس کو گرینڈ اسٹوپڈ تھاٹ, یعنی ایک بے وقوفانہ وچار. یہ راہل گاندھی کے بیان پر انہوں نے جواب دیا ہے, اور یہ بھی آج کئی اخباروں میں پہلے پنے پر
چناؤ کا ذکر ہو رہا ہے. یہاں پر ایک نو بھارت ٹائمز کی خبر کا لیڈ خبر کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ راجنیتک دلوں کو دیے جانے والے چندے میں زیادہ پاردرشتا لانے کے لیے سرکار جلد ہی الیکٹورل بانڈ لائے گی. یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ 2000 سے زیادہ چناوی چندہ جو ہے وہ صرف بانڈ کے ذریعے آپ دے پائیں گے.
جی بالکل موہن لال جی, اور ایک اور خبر ہے, بڑی خبر ہے, انڈین ایکسپریس بتا رہا ہے کہ سرکار نے جو کیٹل سلاٹر یعنی پشوؤں کے قتل کے لیے جو یاتایات پربھن ہوتا تھا اس پر جو روک لگائی تھی اس روک کو سرکار ہٹا سکتی ہے. انڈین ایکسپریس نے جو ہے ادھیکاریوں کے حوالے سے بتایا ہے, اور نئی دنیا اخبار میں ایک کے اوپر ایک دو خبریں ہیں. ایک خبر بتا رہی ہے 2,00,000 نہیں دیے تو بارات لے کر نہیں آیا دلہا, مہندی لگائے تھانے پہنچی دلہن, اور उसके जो हाथ हैं दुल्हन के उन पे मेहंदी लगी हुई है, दहेज का मामला बताया जा रहा है। और ठीक इसी के ऊपर खबर है, दहेज प्रताड़ना में सीधे गिरफ्तारी पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट। अभी तक जो दहेज का कानून है उसमें एक बार मुकदमा दर्ज हो जाए तो जिसके खिलाफ मुकदमा होता है उसको और उसके परिजनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
लंबे अरसे से दहेज का जो कानून है ना, इस पे चर्चा चल रही है
जी, ये लंबे समय से बहस चली आ रही है और अब सुप्रीम कोर्ट जो है इस गिरफ्तारी जो तुरंत हो जाती है इस पर रोक को हटा सकता है। एक और खबर का मैं जिक्र करना चाहूंगा, 4000 युवकों के खिलाफ पथराव के मामले होंगे वापस, ये महबूबा मुफ्ती का बयान आज अखबार
जी। बहुत बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा आपका।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
कार्यक्रम में अब वक्त है दुनिया जहान का। 16 साल तक यूरोप के मोस्ट वांटेड रहे पूर्व सर्ब कमांडर रेटको म्लाडिच अब ताउम्र सलाखों के पीछे रहेंगे। द हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध ट्रिब्यूनल ने पिछले हफ्ते उन्हें युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया। म्लाडिच किन हालात में बोस्निया के कसाई कहलाने लगे, इस बार दुनिया जहान में हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने यही पड़ताल की है।
दुनिया जहान, तारीख थी 26 मई 2011। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड की उत्तरी दिशा में बसा अलसाता साल लेजारेवो गांव अचानक चुस्त और चौकन्ना नजर आने लगा। चेहरे पर काला नकाब लगाए और काले कपड़े पहने हथियारबंद लोगों ने पीली ईंटों से बने एक मकान को घेर लिया। वो धड़धड़ाते हुए अंदर दाखिल हुए और गार्डन में टहलने के लिए निकलते एक बुजुर्ग को गिरफ्त में ले लिया और वो खामोशी से उन नकाब पोशों के साथ चल दिए। 6 साल 5 महीने और 26 दिन के बाद यानी 22 नवंबर 2017 को 74 बरस का हो चुका वही शख्स हेग की वार क्राइम ट्राइब्यूनल को शैतानों की जमात बताते हुए चीख रहा था।
मिस्टर म्लाडिच, इफ यू कंटिन्यू लाइक दिस।
ट्राइब्यूनल के सामने उसके खिलाफ गवाही देने वाले मेवलेडिन ऑरिज जैसे कुछ लोगों ने उसे दूसरा हिटलर बताया था।
मैं गवाही देने हेग गया ताकि दुनिया जान सके कि हिटलर के बाद एक और हिटलर था, रेटको म्लाडिच।
रेटको म्लाडिच को एक और नाम दिया गया था, बूचर ऑफ बोस्निया यानी बोस्निया का कसाई। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज के प्रोफेसर आर के जैन इस उपनाम की वजह बताते हैं।
म्लाडिच था, ये सर्बियन फोर्सेस का जो जनरल था, ये एक एथनिक क्लींजिंग के दौरान जो वहाँ गृह युद्ध 1992 से 1995 तक चला, तो उसमें उसने एक सारायेवो की सीज थी और सेब्रेनिका में जो नरसंहार हुआ उसका ये मुख्य रूप से नायक था।
आलोचकों के मुताबिक म्लाडिच अजब सी सनक में रहते थे, लेकिन उन्होंने संघर्ष और संग्राम का रास्ता खुद चुना या ये उनकी नियति का हिस्सा था, इसे लेकर विश्लेषकों की राय बंटी हुई है। दक्षिण बोस्निया के कालिनोविच गांव में जन्मे म्लाडिच साल 1945 में जब महज 2 साल के थे तभी नाजी समर्थित सेना से लड़ते हुए उनके पिता की मौत हो गई। वो मार्शल टीटो की अगुवाई वाले यूगोस्लाविया में बड़े हुए और सेना में अधिकारी बने। उनकी पहचान एक ऐसे अधिकारी की थी जो हर वक्त अपने जवानों को प्रेरित करते थे। साल 1991 में जब संघर्ष शुरू हुआ तो म्लाडिच को क्रोएशियाई फोर्स के खिलाफ यूगोस्लाव सेना की नवी कमान की जिम्मेदारी दी गई। एक साल बाद वो 1,80,000 सैनिकों वाली बोस्निया सर्ब आर्मी के प्रमुख बना दिए गए और अगले 3 साल तक यानी 1992 से 1995 तक बोस्निया की जमीन पर जो हुआ उसने रेटको म्लाडिच की छवि को हमेशा के लिए बदल दिया। गृह युद्ध में हजारों लोगों की मौत हुई, लाखों लोग विस्थापित हुए। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद साल 1995 में यूएन वार क्राइम ट्राइब्यूनल ने म्लाडिच पर तमाम दूसरे इल्जामों के साथ नस्लीय हिंसा के 2 प्रमुख अभियोग लगाए। बोस्निया की राजधानी सारायेवो में घेरेबंदी और सेब्रेनिस्ता में सामूहिक नरसंहार। सारायेवो के 3 साल के घेराव के दौरान 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। उस दौरान म्लाडिच बोस्निया के सर्ब मूल के नेता रेडोवान केराजिच के साथ नस्लीय नरसंहार के प्रतीक बन गए थे। विश्लेषकों की राय है कि वो इस संघर्ष को मुस्लिम तुर्कों के 5 शताब्दी लंबे अधिग्रहण का बदला लेने के मौके के तौर पर देखते थे। बोस्निया के मुसलमानों के लिए उस दौर की यादें आज भी रोंगटे खड़े कर देती हैं। रिपोर्टों के मुताबिक सरायेवो की घेरेबंदी के दौरान सेना के जवान हर चलती चीज में गोली मार देते थे, चाहे वो कार हो, पुरुष हो, महिला हो या फिर बच्चे हो। लेकिन जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे जघन्य नस्लीय नरसंहार बताया जाता है, वो घटना जुलाई 1995 में घटी।
At the United Nations today, the US Ambassador Madeleine Albright presented evidence.
राजधानी सरायेवो से 80 किलोमीटर दूर बसे सेब्रेनिस्ता की एक एनक्लेव को संयुक्त राष्ट्र ने सुरक्षित पनाहगाह घोषित किया हुआ था। प्रोफेसर आर के जैन बताते हैं,
बोस्निक मुस्लिम्स थे, उनके खिलाफ जो है वो एथनिक क्लिनजिंग का जो इसने एक बर्बर जो तरीका अपनाया, तो उसने क्या करा कि घेर के, और वहां बल्कि जो ये बोस्निक मुसलमान थे वो एक डच गैरिसन था, एक यूएन सेफ एरिया था सब्रनिका में, एथनिक क्लेंजिंग जो कि हम अफ्रीका वगैरह में देखते हैं लेकिन यूरोप में एक इकलौती मिसाल है।
ब्लाडिच की सेना ने डच सैनिकों से यहां का अधिकार हासिल कर लिया। महिलाओं और बच्चियों को तो सुरक्षित रास्ता दे दिया गया, लेकिन 12 बरस के बच्चों से लेकर 77 बरस तक की उम्र के पुरुषों को अलग ले जाकर गोली मार दी गई। मेवलेडिन ऑरेज कहते हैं कि वो मरे होने का बहाना करते हुए इस नरसंहार में बच गए थे। हेग में म्लाडिज के खिलाफ गवाही देने गए ऑरेज ने बीबीसी को सेब्रेनिस्ता में वो जगह दिखाते हुए कहा,
यहाँ एक सामूहिक कब्र थी, यहाँ, और मैं यहाँ लेटा था। आप लाशों से भरा पूरा मैदान देख सकते हैं।
कुछ वक्त बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की पहल पर समझौता हुआ और गृह युद्ध खत्म हो गया। साल 1995 में युद्ध अपराध के आरोप लगने के बाद म्लाडिज भाग निकले, वो बेलग्रेड चले गए। उस दौरान उन्हें यूगोस्लाविया के तब के राष्ट्रपति स्लोबोदान मिलोशेविच का खुला समर्थन और संरक्षण हासिल था। अंगरक्षकों से घिरे म्लाडिज व्यस्त रेस्टोरेंटों में खुलेआम जाते, फुटबॉल मैच और घोड़े की रेस देखते नजर आते। साल 2000 में मिलोशेविच सत्ता से बेदखल हुए और उसके बाद म्लाडिज की मुश्किलें शुरू हुई, लेकिन वो सर्बिया में ठिकाने बदलकर छुपते रहे। सर्बिया पर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच अक्टूबर 2004 में उनके विश्वस्त सहयोगियों ने आत्मसमर्पण किया तो लगा कि वो भी पकड़े जाएंगे, लेकिन वो मई 2011 तक आजाद रहे। म्लाडिज कहते थे कि उन्हें जिंदा नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन उन्होंने खामोशी के साथ सरेंडर कर दिया, अपनी दो बंदूकों को छुआ तक नहीं। साल 2012 में हेग में म्लाडिज के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई, उन पर नस्लीय नरसंहार समेत कुल 11 अभियोग लगाए गए।
मिस्टर म्लाडिज, सिट।
उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी और कोर्ट इस बात को लेकर फिक्रमंद थी कि कार्रवाई पूरी होने तक कहीं उनकी मौत न हो जाए। अपनी तमाम शारीरिक कमजोरियों के बाद भी वो कोर्ट में उदंड से दिखते और जजों के साथ बहस करते थे।
Curtains down, Mr. Mladic will be removed from the courtroom.
प्रोफेसर हर्षपंत कहते हैं,
उसमें उनका जो पक्ष था वो यही था कि जब वायलेंस दोनों तरफ से हुआ था तो मुझे क्यों सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहे हैं।
म्लाडिज की 12 सदस्यीय डिफेंस टीम ने दलील दी कि जिस वक्त सेब्रेनिस्ता में हत्याएं हुई उस वक्त वो बेलग्रेड में थे। अभियोजन पक्ष ने इससे इनकार नहीं किया, लेकिन ये दलील दी कि रवानगी के पहले वो अपने सहयोगियों से मिले थे और नरसंहार के आदेश दिए थे। उनकी क्रूरता के भावनात्मक पहलू भी तलाशे जाते हैं। सेब्रेनिस्ता में नरसंहार के कुछ पहले उनकी बेटी एना ने खुद को गोली मार ली थी। बहुत से लोगों का मानना है कि इस वजह से वो ज्यादा सख्त हो गए थे।
The chamber sentences Mr. Ratko Mladic to life imprisonment.
सुनवाई पूरी होने के करीब एक साल बाद इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने म्लाडिज को नस्लीय नरसंहार और दूसरे अत्याचारों का दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। बोस्निया संघर्ष के पीड़ितों के लिए ये राहत की बात थी।
बोस्निया का कसाई दुनिया जहान पेश कर रहे थे वात्सल्य राय, और इससे पहले के कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार सुनने का वक्त आ चला है।
एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में पूर्व बोस्नियाई क्रोएशियाई जनरल स्लोबोदान प्रालिएक ने हेग की अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत में ही जहर पी लिया, बाद में उनकी अस्पताल में मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र में अमरीकी दूत निकी हेली ने उत्तर कोरिया के नेतृत्व को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि युद्ध हुआ तो उत्तर कोरिया पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप के दक्षिणपंथी ब्रितानी समूह के भड़काऊ वीडियो रिट्वीट करने की ब्रितानी प्रधानमंत्री ने आलोचना की है। ज्वालामुखी की राख की वजह से 3 दिन से बंद बाली द्वीप के एकमात्र एयरपोर्ट के दोबारा खुलने के बाद लंबी कतारें लगी हैं और असमंजस का माहौल है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष। शाम को 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक चाहे खेल हो, राजनीति हो, दुनिया के पल पल बदलते घटनाक्रम को पढ़ने के लिए bbchindi.com पर आइए, जो है 24 घंटे आपके साथ। मोहनलाल शर्मा को विदा दे, नमस्कार।